மோக்ஷமார்கஸ்ய நீதாரம் பேத்தாரம் கர்ம பூவிருதாம் ஜ்ஞாதாரம் விஸ்வதத்வானாம் வந்தே தத்குணலப்தயே. तत्वार्थ सूत्र का षष्ठ अध्याय, आश्रव पदार्थ का वर्णन है इसमें। ज्ञानावरण और दर्शनावरण का आश्रय, साता और असाता का आश्रय। सूत्र 12 तक आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बतलाया। अब 13वें सूत्र में दर्शन मोह अर्थात मिथ्यात्व का आश्रय बतलाते हैं। ये मिथ्यात्व कैसे आता है आत्मा में? अथ तदनंतर उद्देश्य भाजो मोहस्याश्रव हेतु वक्तव्ये तद्भेदश्च दर्शन मोह तद्भेदस्य दर्शन मोहस्याश्रव हेतु प्रतिपादनार्थम इदमुच्यते। साता वेदनी का आश्रय बतलाने के पश्चात जिसका कथन करने योग्य है ऐसा जो मोह कर्म है उसका आश्रय बताने के लिए, उसके आश्रय हेतु बताने के लिए आचार्य कहते हैं सबसे पहले दर्शन मोह और फिर चारित्र मोह। मोह दो प्रकार का होता है। मोह का अर्थ भ्रांति होता है, भ्रम। अब जो अपने विश्वास में, अपनी आस्था में, अपने श्रद्धान में भ्रम उत्पन्न करता है उसको दर्शन मोह कहते हैं। और जो आचरण में दोष उत्पन्न करता है, भ्रम उत्पन्न करता है वो चारित्र मोह है। तो दर्शन मोह में मिथ्यात्व आता है, चारित्र मोह में कषाय आती है। तो मिथ्यात्व का आश्रय हेतु क्या है वो बता रहे हैं। केवलिश्रुत संघ धर्म धर्म केवलिश्रुत संघ धर्म देवावरण वादो दर्शन मोहस्य। मिथ्यात्व के आश्रय ये हैं। केवली का आवरणवाद, श्रुत यानी शास्त्र का आवरणवाद, संघ यानी चतुर्विध संघ का आवरणवाद, धर्म का आवरणवाद और देवों का आवरणवाद करना दर्शन मोह का आश्रय, मिथ्यात्व का आश्रय है। निरावरण ज्ञानाः केवलिनः, जिनका ज्ञान आवरण से रहित है वे केवली कहलाते हैं। तदुपतिष्टम बुद्ध्यतिशयार्धि युक्त गणधरानुस्मृतम ग्रंथ रचनम श्रुतम भवति। उनके द्वारा उपदिष्ट बुद्धि संबंधी अतिशयों से जो रिद्धि युक्त गणधर देव होते हैं वो उनके उपदेश का स्मरण करके जो ग्रंथ रचना करते हैं उसको श्रुत कहते हैं। क्योंकि उन्होंने सुना और उसके बाद में उन्होंने उसको काव्य रूप में निबद्ध कर दिया, उसको श्रुत कहते हैं। फिर रत्नत्रयोपेत श्रमण संगण संघ, रत्नत्रय से युक्त जो साधुओं का समूह है उसको संघ कहते हैं। अहिंसा लक्षण तदागम देशितो धर्म, जिनेंद्र भगवान के आगम से जिसका जिसकी देशना हुई है और जो अहिंसा के नाम से प्रसिद्ध है, अहिंसा जिसका लक्षण है वो धर्म है। ये अहिंसा लक्षण धर्म आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने दो बार कहा है, एक बार 12 अनुप्रेक्षाओं के प्रकरण में 9वें अध्याय में, एक बार यहां पर 6ठे अध्याय में। अहिंसा परमो धर्म कहीं जैन शास्त्रों में नहीं मिलता, अहिंसा लक्षणो धर्म ये मिलता है। फिर देवाश चतुर निकाया उक्ता, देव जो चार समूह वाले हैं वो कहे जा चुके हैं। तो गुणवत्सु महत्सु, जो गुणवान है जो महान है उनमें असद्भूत दोषोद्भावनम अवरणवाद, अविद्यमान दोषों को उद्भावित करना यानी लगाना उन पर, दोष उत्पन्न करना उनमें, उसको अवरणवाद कहते हैं। अवरणवाद का अर्थ हो गया असत्य दोषारोपण। एतेषु अवरणवादो दर्शन मोहस्याश्रव हेतु, इन सभी का अवरणवाद दर्शन मोह के आश्रव का हेतु है। जैसे केवल लभ्यावहार जीविन, केवल अव्यवहार जीविन केवलिन इत्येवमादि वचन केवल नाम अवरणवाद। केवली भगवान भोजन लेते हैं तभी वो जीवित रह सकते हैं, भोजन के बिना तो प्राण निकल जाते हैं, ऐसा केवलियों के विषय में कहना, तो ये दोष जो क्षुधा अधिक दोष होते हैं वो केवली भगवान में नहीं होते, लेकिन ऐसी मान्यता रखना और ऐसा कथन करना केवलियों का अवर्णवाद है। जो दोष उनमें नहीं है ऐसे असत्य दोष का उनके ऊपर आरोपण करना है, अवरणवाद है। मांस भक्षणाद्यनवद्याभिधानम श्रुतावरणवाद, मांस भक्षण अधिक निर्दोष है क्योंकि कुछ शास्त्रों में उनका कथन आया हुआ है, तो शास्त्र झूठे तो नहीं होते, शास्त्र तो सच्चे होते हैं। तो इस प्रकार शास्त्रों में मांस भक्षण का समर्थन बताना श्रुत का आवरणवाद है, आगम का, आगम पर असत्य दोषारोपण है। वस्तुतः आगम में कहीं भी मांस भक्षण का कथन नहीं आता, और जहां आता है वो वास्तव में आगम नहीं होता। जिन शास्त्रों में इसका कथन है वो वास्तव में शास्त्र नहीं है, क्योंकि शास्त्र तो धर्म का उपदेश देते हैं और धर्म हिंसा का उपदेशक कैसे हो सकता है। तो ये श्रुतावरणवाद कहलाता है, यानी आगम का वर्णवाद। फिर शूद्रत्वाशुचित्वाद्यभिधान, शूद्रत्वाशुचित्वाद्याविर्भावनम संघावरणवाद, संघ का आवरणवाद ये होता है कि ये संघ वाले जो है इनके अंदर नीचत्व है, शूद्रत्व है, इनके अंदर अपवित्रता है आदि आदि। श्रमण संघ के प्रति इस प्रकार के वचन बोलना संघ का अवर्णवाद है। जिनोपदिष्टो धर्म धर्मो निर्गुणस तदुपसेविनो येते चासुरा भविष्यन्ति तेवमाद्यभिधानम धर्मावरणवाद। धर्म का अवर्णवाद ऐसा है कि जो जैन द्वारा उपदेशित धर्म है उसमें कोई लाभ नहीं है, बोले उसकी सेवा करने वाले जो लोग हैं वे भविष्य में असुर बनेंगे आदि आदि कथन करना धर्म के विरोध में, वो धर्म का अवर्णवाद है। सुरा मांसोप सेवा त्याघोषणम देवावर्णवाद, मदिरा मांस आदि का सेवन करने वाले देवलोग होते हैं ऐसा कथन करना देवावर्णवाद है, देव संबंधी अवर्णवाद है। तत्वार्थ वार्तिक में और देखते हैं, क्योंकि ये सबसे गंभीर बात है ना, मिथ्यात्व का आश्रय जो है सबसे खतरनाक होता है। इसमें एक प्रश्न किया कि एक मुनि है उनकी निंदा करने से तो ये दोष नहीं आएगा संघ के अवर्णवाद का, संघ में तो अनेक साधुओं होते हैं तो अनेक साधुओं के संघ की निंदा करने से ये दोष लगेगा मिथ्यात्व के आश्रय का, अगर कोई एक साधु है उनकी निंदा करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि चूंकि एक साधु के पास भी मूल गुण और उत्तर गुण रूपी संघ होता है इसलिए एक साधु की निंदा भी संघावरणवाद हो जाएगी। संघो गुण संघादु कम्माण विमुख दो हवदि संघो दंसनान चरित्ते संघादिंतो हवे हवदि संघो। गुणों के समूह को संघ कहते हैं, कर्मों को छूटने के लिए जो दर्शन ज्ञान चारित्र का समूह होता है वो भी संघ कहलाता है। अहिंसा आदि लक्षणों धर्म, अहिंसा आदि जिसका लक्षण है वो धर्म है। उस जैन आगम में निर्दिष्ट अहिंसा लक्षण धर्म होता है ऐसा कहा गया है। बाकी तो अपन ने जो पढ़ा था वही है। फिर मांस मत्स्य मधु मदिरा इनका सेवन शास्त्रों में बताया है, इस तरह से कहना है ये शास्त्रों का अवर्णवाद है। ये साधु शूद्र हैं, नहाते नहीं हैं, इनका शरीर मैला रहता है, इनकी त्वचा पर धूल लगी रहती है, ये दिगंबर साधु निर्लज्ज रहते हैं, अपवित्र होते हैं, यहाँ तो दुखी हो ही रहे हैं, आगामी भव में भी सुखी कहाँ से हो जाएंगे, इस प्रकार कहना संघ का आवरणवाद है। फिर देवावरणवाद में कह रहे हैं कि सुरा और मांस इनका सेवन करते हैं देवलोग, ये देवावरणवाद है। जो श्रद्धा को भ्रमित करे उसको दर्शन मोह कहते हैं। अब चरित्र मोह के आश्रव को बताते हैं। कषाय उदयात् तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से होने वाला जो तीव्र परिणाम होता है वो चारित्र मोह का आश्रव है। द्रव्यादि निमित्त वशात कर्म परिपाक उदय। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इनके निमित्त के प्रभाव से कर्मों का जो परिपाक यानी फल मिलता है उसको उदय कहते हैं। प्राग उपात्तस्य कर्मणः पहले संचित किए हुए कर्म का द्रव्यादि निमित्त वशात फल प्राप्ति ही, द्रव्यादि के निमित्त वश उनके फल की प्राप्ति परिपाक उनका परिपाक उदय होता है ऐसा निश्चित है। कषायो निरुक्त कषाय बतला चुके हैं क्या है तो कषायस्य उदय कषाय उदय तस्मात कषाय उदयात। कषाय के उदय से तीव्र परिणाम शब्दावुक्तार्थ तीव्र और परिणाम इन दोनों शब्द के अर्थ भी बताए जा चुके हैं पहले आ चुका था तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात में तीव्र शब्द का अर्थ था परिणाम का भी अर्थ आ चुका था। चारित्र मोह यति मोहनम वा चारित्र मोह चारित्र को जो मोहित करता है भ्रमित करता है वो चारित्र मोह। जगद अनुग्रह तंत्र शील व्रत भावितात्म तपस्वी जन ग्रहण। सारे जगत का उपकार करना ही जिनका स्वभाव है जिनके पास शील और व्रत है और जिन्होंने अपने आत्मस्वरूप को भावित किया हुआ है ऐसे तपस्वी जनों को की निंदा करना। धर्म विध्वंसन और धर्म का विनाश करना तद अंतराय करणम और धर्म में विघ्न करना। शील गुण देश संयत विरति रति प्रच्छावन। शील गुणों से अथवा शील और गुणों से देश संयम से और विरति यानी सकल संयम से किसी आसक्ति में डाल करके उनको नीचे गिराना। मधु मध्य मांस विरत चित्त विभ्रमो विभ्रमापादन जो इन वस्तुओं का त्याग कर चुके हैं भक्षों का उनके मन को भ्रमित करना कि अरे कुछ नहीं होता अभी तो ले सकते हो बोले ऐसा कुछ नहीं है दवाई में लेने में क्या है बाद में प्रायश्चित कर लेना बोले। वृत्त संदूषण आचरण में दूषण उत्पन्न करना। संक्लिष्ट लिंग व्रत धारण और फिर दीक्षा ले ली है तो फिर उसके बाद में तीव्र कषाय करते रहना मन को शांत न रखना, फिर स्वपर कषाय उत्पादन आदि लक्षण, अपने में और दूसरों में कषाय उत्पन्न करने का काम करना, ये सब जो है कषाय वेदनीय स्यासर्व, कषायों का बंद कराने वाले काम है, आश्रव है उनके। तो कषायों की बात की, अब नौ कषाय की बात करना। उत्प्रहासादीन नाभिहासित्व कंदर्पोपहसन बहु प्रलापोपहासशीलता हास्य वेदनीयस्य। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसक वेदी नौ नौ कषाय है। बहुत जोर से हंसना अथवा समीचीन धर्म के पालन करने वालों की हंसी उड़ाना, दीन दुखियों को देखकर हंसना, काम चेष्टा पूर्वक हंसना, बहुत बकबक करना, बात बात पर हंसना, ये सब हास्य कर्म के आश्रम हैं। विचित्र पर क्रीड़न पर सौचित्यावर्जन बहुविध पीड़ा भाव देशाद्यनौत्सुक्य प्रीति संजननादि रतिवेदनीयस्य। विचित्र क्रीड़ा करना, दूसरों के चित्त को आकर्षित करना, दूसरों को अनेक प्रकार के दुख देने का भाव करना, क्षेत्र आदि के प्रति उत्साह न रखना, पर पदार्थों में प्रीति अर्थात रति अकषाय वेदनीय के आश्रव के कारण है। दूसरों की प्रीति का नाश करना, दूसरों में अप्रीति को उत्पन्न करना, पाप स्वभावी व्यक्तियों की संगति करना, अकुशल क्रिया को प्रोत्साहित करना, ये अरति वेदनीय का आश्रव है। अपने में शोक करना, प्रीति के लिए दूसरों को शोक कराना, दूसरों को दुख उत्पन्न करना, शोक से व्याप्त का अभिनंदन आदि करना, शोक वेदनीय के आश्रव के कारण है। फिर भय के आश्रव बतलाते हैं, स्वयं भयभीत रहना, दूसरों को डराना, निर्दयता, दूसरों को त्रास देना अर्थात आतंकित करना आदि भय वेदनीय के आश्रव के कारण है। धर्मात्मा, चतुर्वर्ण, विशिष्ट धर्म, कुल आदि की क्रिया और आचार में तत्पर पुरुषों से ग्लानी करना, दूसरों की बदनामी करने का स्वभाव होना आदि क्रियाएं और भाव जुगुप्सा के आश्रव में कारणभूत है। अत्यंत क्रोध के परिणाम रखना, अत्यधिक मान करना, अत्यंत ईर्ष्या करना, असत्य बोलना, छल कपट करना, प्रपंचों में तत्पर रहना, तीव्र राग, परस्त्री गमन में रुचि, पर स्त्रियों के प्रति अत्यंत रुचि रखना, स्त्री भाव में अनुराग रखना, उसके स्पर्श आदि में रुचि रखना, ये स्त्री वेद के आश्रव है। देखिए सर्वार्थ सिद्धि में जो चार बातें लिखी थी, यहां पर उसको और विस्तृत रूप से दे रहे हैं। प्रकृष्ट क्रोध परिणाम, बहुत ज्यादा क्रोध रखना, दिन रात पारा चढ़ा रहता है, एकदम हाई टेम्परेचर रहता है दिमाग का, इतना गुस्सा रहता है। फिर अधिक मान करना, अधिक ईर्ष्या करना, और व्यापार धंधा में झूठ अधिक बोलना, फिर ज्यादा छानबीन करना, अधिक राग, पर स्त्रियों के प्रति राग, उनमें आसक्ति रखना, ये सब स्त्री वेद के आश्रम है। फिर पुरुष वेद के आश्रम क्या है? स्तोक क्रोध, थोड़ा मतलब कम क्रोध रखना, जैम निवृत्ति, कपट से दूर रहना, अनुत्सिकत्व, घमंड रहित होना, अलोभ भाव, लोभ से रहित होना, स्त्रियों के प्रति अल्प राग रखना, स्वधार संतोष रखना, ईर्ष्या विशेष को शांत रखना, ईर्ष्या नहीं करना, स्नान, गंध, माल्य, आभरण के प्रति अधिक रुचि नहीं रखना सजावट वगैरह में, तो उससे पुरुष पर्याय, पुरुष वेद का आश्रय होता है। फिर नपुंसक वेद का आश्रय बतलाते हैं, प्रचुर क्रोध, मान, माया, लोभ परिणाम, फिर गुह्येन्द्रिय का व्यपरोपण, स्त्री पुरुष के अनंग व्यसनित्व, व्यसनी होना, फिर शील, व्रत, गुणधारियों के प्रति और दीक्षा श्रित, प्रमथन, उनको विचलित करना, जो अच्छे गुणी जन है, व्रती लोग हैं, उनको वहां से डिगाने की कोशिश करना, पर स्त्री पर आक्रमण करना, राग की तीव्रता से अनाचार का सेवन करना आदि क्रियाओं और भावों से नपुंसक वेद नाम नौकषाय का आश्रय होता है। इस तरह मोहनीय कर्म के आश्रयों की चर्चा यहां पर संपन्न हुई। अब आयु कर्म के अंतर्गत चार आयु होती है, उनके आश्रयों की चर्चा इसके आगे की जाएगी। तो आज अभी अपन इतना रखते हैं इसको। जय नम जय दुशासनम।